जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए।
ओम शांति। अगर हम आज की जीवन शैली देखते हैं तो लगभग सभी तनाव का अनुभव करते हैं। ऐसे कहेंगे कि तनाव से हो गई है दोस्ती इस कदर, तनाव होता है तनाव के न होने पर। और अगर हम देखें तो आज बच्चे भी तनाव का अनुभव करते हैं। आज की पढ़ाई में इतना कंपटीशन है कि छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाई का टेंशन होता है। मुझे याद है आप जैसे कल सुन रहे थे विद्यालय के परिचय में कि अपने यहाँ बहुत सारे विंग्स हैं, अलग अलग व्यवसायों के। ऐसे एक मेडिकल विंग है जो लोगों की स्वास्थ्य की शिक्षा देने के लिए स्वास्थ्य मेले आयोजित करते हैं। तो ऐसे ही एक शहर में स्वास्थ्य मेला लगाया गया था और उसमें एक माँ अपने बच्चे को लेकर के वो मेला देख रही थी। तो उसमें एक स्टॉल था जहाँ ये कहा गया कि यहाँ आप अपनी बुराई का दान कर सकते हैं। बुराई का दान करना माना कोई व्यसन लेता है, शराब पीता है या सिगरेट पीता है या ऐसी कोई बुराई है तो वो दान करें। तो माँ को बहुत अच्छा लगा और उसने अपने बेटे को कहा कि बेटा तुम चॉकलेट बहुत खाते हो, तुम्हारे दांत खराब हो रहे हैं, डॉक्टर तुम्हें चॉकलेट खाने के लिए मना करते हैं, तो तुम अपनी चॉकलेट दान कर दो। तो वो बेटा कहता है माँ मुझे सोचने दो मुझे क्या दान करना है। फिर बोलता है कि मैं अपनी पढ़ाई दान कर दूं, मुझे अपनी पढ़ाई से बहुत टेंशन होता है। तो आज की हम देखते हैं कि बच्चों के जब एग्जाम्स चलते हैं तो कई बार बच्चे उतना टेंशन में नहीं होते जितना माँ बाप टेंशन में होते हैं, क्योंकि उनके कैरियर को लेकर माँ बाप को ज़्यादा चिंता रहती है, ज़्यादा तनाव रहता है कि अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, और कोशिश करते हैं 90% से ऊपर ही इनके मार्क्स आने चाहिए। तो कहा कि 18वीं सदी ज्ञान में उन्नति की सदी थी और 19वीं सदी को आविष्कारों की सदी कहा गया। 20वीं सदी जो आई वो उन आविष्कारों के कारण सुख और समृद्धि की सदी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सुख सुविधा के साधन मनुष्य को मिले। लेकिन फिर भी 20वीं सदी को एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कहा गया और वर्तमान में हम 21वीं सदी में हैं। मेडिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर यही हमारी जीवन शैली रही तो ये 21वीं सदी कौन सी सदी हो जाएगी? एज ऑफ पैनिक एंड डिप्रेशन। आज डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अकेले भारत में 2 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन की दवाइयां खाते हैं। यहां तक कि बच्चों को भी डिप्रेशन होने लगा है आज के समय में। लेकिन अगर हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन ले आते हैं तो फिर ये सदी शांति की सदी भी हो सकती है। हम कौन सी सदी में जीना चाहते हैं? शांति की सदी में जीना चाहते हैं या डिप्रेशन की सदी में जीना चाहते हैं? शांति की सदी में। तो फिर हमें अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना होगा। तो तनाव के ऊपर सबसे ज्यादा अध्ययन 20वीं सदी में ही हुए और एक वैज्ञानिक हेंसले हुए जिन्होंने इस क्षेत्र में काफी अध्ययन किया और उन्होंने तनाव को परिभाषित किया कि तनाव हमें तब होता है जब प्रेशर्स ज्यादा हैं और कोपिंग एबिलिटी कम है। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स अपॉन कोपिंग एबिलिटी, यानी समस्याएं ज्यादा हैं, परिस्थितियां ज्यादा हैं, लेकिन उसकी तुलना में जो हमारी सामर्थ्य होनी चाहिए, जो शक्ति होनी चाहिए वो अगर कम है, तो फिर हम जो दर्द महसूस करते हैं से हम तनाव कहते हैं. स्ट्रेस इज ए फॉर्म ऑफ पेन दैट कम्स टू टेल मी देयर इज समथिंग आई नीड टू चेंज. ये एक प्रकार का दर्द है जो मुझे ये कहता है कि मुझे कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है, और उस परिवर्तन को लाने के लिए मुझे कुछ नया सीखना होगा. और आज हम देखते हैं कि प्रेशर्स हमारे ऊपर चारों तरफ से आते हैं. भूतकाल में हमारे जीवन में कुछ घटनाएं घटी होती हैं जिन्हें हम सोचते हैं, और वर्तमान में भी तनाव महसूस करते हैं. ऐसा क्यों हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, जो भी. मानो ये रुमाल बहुत हल्का है और मैं हाथ में पकड़ती हूं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन अगर इसी रुमाल को मैंने 10 घंटे ऐसे ही हाथ में पकड़ लिया तो मेरा हाथ दर्द करने लगेगा. तो ऐसे ही जीवन में जब घटनाएं घटती हैं तब वो बहुत बड़ी नहीं होती हैं, छोटी होती हैं, लेकिन हम उसे सोच सोच कर राई को पहाड़ बनाते हैं, और वर्तमान में भी उसके दर्द को महसूस करते हैं क्योंकि हमने उसे पकड़ रखा है, हम उन्हें छोड़ते नहीं हैं. पास्ट को पास्ट नहीं करते हैं क्योंकि जो बीत गया वो कभी लौट कर आने वाला नहीं है, और कई बार भविष्य की चिंता में रहते हैं. ऐसा हो गया तो क्या होगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा होगा कि नहीं होगा. मानो किसी की नौकरी ऐसी है तो वो सोचेंगे कहीं मेरी नौकरी चली तो नहीं जाएगी, या मानो किसी को कोई बीमारी है, या किसी दूसरे का सुन लेते हैं कि इनको ऐसी बीमारी कहीं मुझे तो नहीं हो जाएगी. माना बिना कारण अगर हम भविष्य की चिंता करते हैं तो वो भी हमें तनाव देता है, और वर्तमान के अपने दबाव होते हैं, अपनी समस्याएं होती हैं, और इस तरह से चारों तरफ से प्रेशर होता है हमारे ऊपर. हेंसले ने यह भी बताया कि जब हम तनाव की स्थिति में होते हैं तो हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स बनते हैं. ये केमिकल्स हानिकारक हैं, स्लो पॉइजन का काम करते हैं, जिन्हें हम एड्रेनलिन और स्टेरॉइड्स कहते हैं. शरीर में लंबे समय तक तनाव में रहने से अनेक बीमारियां होने लगती हैं जिन्हें मनोकायिक रोग कहते हैं. इसके ऊपर भी अध्ययन हुए. येल यूनिवर्सिटी एक अमेरिका में है जिसमें विद्यार्थियों के ऊपर एक स्टडी की गई कि तनाव का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं. तो उनकी 20 वर्ष की आयु में उनको उनके व्यक्तित्व के अनुसार दो ग्रुप में बांटा गया. पहले ग्रुप में वो विद्यार्थी लिए गए जो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते थे, धैर्य नहीं रख सकते थे, अपने मन को शांत नहीं रख सकते थे. इसके कहने का मतलब जो तनाव वाली पर्सनालिटी थी. दूसरे ग्रुप में उन विद्यार्थियों को लिया गया जो शांत स्वभाव के थे, अपने मन में धैर्य रख सकते थे और मन को स्थिर रख सकते थे. और उन दोनों के स्वास्थ्य की जांच की गई तो देखा कि उस समय दोनों ग्रुप का स्वास्थ्य सामान्य था, लेकिन क्योंकि एक स्टडी थी तो हर 10 साल में उन्हें स्वास्थ्य की जांच के लिए बुलाया जाता था. तो ये देखा गया कि 50 साल की उम्र तक आते आते जो पहला ग्रुप था उसमें दूसरे ग्रुप की तुलना में 5 गुना अधिक बीमारियां हो चुकी थी. यानी किसी को ब्लड प्रेशर हो गया था, किसी को डायबिटीज हो गई थी, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, किसी को अल्सर हो गया था, और इसी कारण उनके मृत्यु की संभावना भी दूसरे ग्रुप की तुलना में 5 गुना ज्यादा थी. तो यही कारण है कि हमें अपने तनाव को कम करना चाहिए, या तनाव मुक्त जीवन हमें जीने का प्रयास करना चाहिए. जैसे कल भी आपको बताया गया कि 80% बीमारियां साइकोसोमैटिक डिजीजेस हैं आज. तो आप देख रहे हैं यहाँ कि जब हम तनाव में होते हैं तो सबसे पहले हमारे हृदय की गति बढ़ जाती है और उसके साथ साथ ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि 30-40 साल की उम्र तक आते आते कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक होने लगती हैं, और यदि वो 70% से अधिक ब्लॉक हैं और हम तनाव में आते हैं तो वो आर्टरीज सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि एड्रेनलिन की वजह से वो सिकुड़ती हैं, तो हृदय को ऑक्सीजन कम मिलती है और कभी कभी हार्ट अटैक भी हो सकता है। और ऐसे ही एसिड ज्यादा बनने लगता है, उसकी वजह से हाइपर एसिडिटी हो सकती है, अल्सर हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम पर असर आता है, यानी तंत्रिका तंत्र पर असर आता है, तो फिर सिर दर्द होता है, नींद नहीं आती है, कई बार हाथ पांव कांपते हैं, मुंह सूखता है, थकान बनी रहती है, शरीर में दर्द होते हैं और मस्तिष्क की कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। लंबे समय तक होने से न्यूरोटिक या साइकोटिक डिजीजेस होते हैं, जैसे हमने कहा डिप्रेशन, ये एक न्यूरोटिक बीमारी है। कुछ लोग व्यसन का सहारा लेते हैं तो अपना तनाव कम करने के लिए, लेकिन व्यसन से और ही हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कई बार तनाव कम होता है या नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर आता है। ऐसे ही डायबिटीज और आर्थराइटिस, ये भी साइकोसोमेटिक डिजीजेज हैं। तनाव में हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये सारी बीमारियां सबको नहीं होती हैं, लेकिन जिसका जो सिस्टम कमजोर है, हर एक का हेरिडिटरी से कोई ना कोई सिस्टम कमजोर होता है। हेरिडिटरी माना आनुवंशिकता से, मानो किसी के माता पिता में किसी को हार्ट की बीमारी है या दादा दादी में किसी को हार्ट की बीमारी है, तो इसका मतलब हेरिडिटरी से उनका वो हार्ट कमजोर होता है और उनको तनाव हार्ट डिजीज के रूप में आएगा। माना उसकी जो अभिव्यक्ति होगी, उसके जो लक्षण प्रकट होंगे, वो हृदय रोग के रूप में ज्यादा होंगे। यदि किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है तो फिर पाचन तंत्र के रोग के रूप में, यानी एसिडिटी या अल्सर या गैस या कब्जी, इस रूप में वो लक्षण ज्यादा प्रकट होंगे। आप सभी अनुभवी हैं अपने जीवन में तनाव के। आप में से कोई कह सकता है कि मुझे कभी तनाव न हुआ, न है, न होगा? कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता है, तो मतलब सभी को अनुभव है। तो पहले हम आपसे थोड़ा शेयर करेंगे कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जब आप तनाव महसूस करते हैं, चाहे वो फैमिली में है, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पर है, चाहे वो आपके व्यक्तिगत जीवन की कुछ समस्याएं हैं। तो जो भी बताना चाहें वो थोड़ा जोर से बोलेंगे, सामने वाले ज्यादा भाग ले सकते हैं इसमें, क्योंकि उनकी आवाज सुनाई देगी। तो चाहे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके फैमिली प्रॉब्लम्स हैं या कार्यस्थल पर जहां आप काम करते हैं वहां की प्रॉब्लम्स हैं, मन की बात नहीं होती है जब, जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो हमें तनाव होता है। और जोर से बोलिए, कोई हमारी बात नहीं मानता है। फीलिंग में आ गए, किसी ने कोई बात हमें ऐसी कही और हमें फीलिंग आ गई, तो तनाव होता है। आगे आके बोलिए, हाँ, जिसको भी बोलना है वो आगे आके बोलिए। हाँ, अगर हम निर्दोष हैं और कोई हमें दोषी ठहराता है, हमारी गलती नहीं है लेकिन फिर भी हमारी गलती बताई जाती है, तो तनाव होता है। बहुत अच्छी अच्छी बातें अनुभव से सुना रहे हैं। गवर्नमेंट कंपटीशन, कंपटीशन एक बड़ा कारण है आज के समय में तनाव का। सभी क्षेत्रों में आज कंपटीशन है, कहीं भी चले जाओ आप। और पास्ट का एनालिसिस, नेगेटिव हो जाना पास्ट के बारे में, बिल्कुल। और भविष्य की चिंता, ये तो मैंने अभी बताया आपको। लेन देन, कर्ज होता है मानो किसी के ऊपर, तो वो भी तनाव पैदा करता है। बहने कुछ बताएं, कमेंट्स सुन लेते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रोफेशनल स्ट्रेस होता है। जोर से जोर से। हाँ, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है जो बहुत क्लोज है, तो भी तनाव होता है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं, अगर हम सुनते रहेंगे तो सभी अपने अपने अनुभव से सुनाएंगे। तो इस पर भी एक अध्ययन हुआ, और अमेरिकन साइंटिस्ट थे होम्स एंड राहे, उन्होंने बताया कि जो भी घटनाएं हमारे जीवन में परिवर्तन लाती हैं, जिन घटनाओं से हम सभी गुजरते हैं, वो हमें तनाव पैदा कर सकती हैं। चाहे वो खुशी की घटना ही क्यों ना हो, लेकिन अगर परिवर्तन ला रही है तो तनाव पैदा कर सकती है। परिवार में जैसे डेथ इन द फैमिली, आपने भी शेयर किया, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और खासकर अगर जीवन साथी की मृत्यु होती है और वो असमय मृत्यु हो जाती है, किसी दुर्घटना में मृत्यु होती है, तो वो बहुत तनावपूर्ण होता है। डाइवोर्स एंड सेपरेशन, पति पत्नी के बीच अहम का टकराव होता है, वो साथ नहीं रह सकते, अलग रहने लगते हैं, और स्थिति अगर तलाक तक जाती है तो फिर ये एक परिवार के लिए नहीं, दो परिवारों के लिए तनावपूर्ण स्थिति होती है। और हम देखते हैं कि जो पश्चिमी देश हैं, उनमें ये आम है। हम भारत में भी तलाक के केसेस आज बढ़ते जा रहे हैं। शादी खुशी का अवसर माना जाता है, लेकिन इसमें भी तनाव हो सकता है। एक उदाहरण से हम आपको समझाना चाहेंगे कि कैसे खुशी भी तनाव पैदा कर सकती है। एक बार एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने लॉटरी का टिकट खरीदा, 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट था, जो उनके जमाने में बहुत बड़ी रकम थी, और भाग्य से उनकी वो लॉटरी खुल गई। लेकिन ये समाचार उनकी पत्नी के पास आया, उन्होंने उनका नंबर दिया था, तो जब पत्नी ने सुना तो उन्होंने सोचा कि मेरे पति हार्ट पेशेंट हैं, मुझे डायरेक्ट नहीं बताना चाहिए, मैं डॉक्टर से पूछ लेती हूँ। तो उन्होंने डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर ने कहा उनको आप मेरे पास भेज दो। तो जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उनको थोड़ा हेल्थ के बारे में कुछ समाचार पूछा, और फिर कहा कि अगर आपको 10 लाख की लॉटरी लग जाए तो आप क्या करोगे। तो कहा डॉक्टर, अगर 10 लाख मिलेंगे तो मैं कार ले लूंगा, मुझे कार की जरूरत है। फिर डॉक्टर ने उनको पूछा, अगर आपको 50 लाख मिल जाए तो क्या करोगे। कहा डॉक्टर, अगर 50 लाख मिलेंगे तो फिर मैं घर ले लूंगा। फिर डॉक्टर ने कहा कि आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, आप क्या करोगे। तो उन्होंने सोचा मजाक कर रहे हैं, तो उनका डॉक्टर आप क्यों मजाक करते हैं, मुझे पता है मैंने टिकट खरीदा है, लेकिन मैं इतना भाग्यवान नहीं हूं कि मुझे वो 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाए। तो डॉक्टर ने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, आप क्या करोगे। तो 1 मिनट सोच के बोलते हैं डॉक्टर, अगर ये सच है तो फिर मैं 50 लाख आपको दे दूंगा। वो डॉक्टर को हार्ट अटैक हो गया। तो यहां भी ऐसा होता है, जो माता पिता अपने बच्चों की शादी करते हैं उनको बहुत प्रबंध करने पड़ते हैं, हाँ, उसमें कई समस्याएं हो सकती हैं, फिर कभी धन की समस्या होती है, दहेज की समस्या होती है, ससुराल पक्ष वालों के व्यवहार की समस्या होती है। ये सारी बातें मिला के खुशी के साथ साथ तनाव भी पैदा करती हैं। फिर धन, आज हम धन को शक्ति मानते हैं और हम ये भी देखते हैं कि विज्ञान ने जो भी साधन दिए हैं, हर मनुष्य चाहता है मेरे पास वो सब कुछ हो, तो फिर उसके लिए धन चाहिए। तो आज भाग दौड़ की जिंदगी है, भाग दौड़ की जिंदगी है। क्यों, किसके पीछे भाग रहे हैं? धन कमाने के पीछे। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा धन हम कैसे कमाएं, ये आज की युवा पीढ़ी विशेष रूप से सोचती है और इस कारण हम गलत तरीके भी अपनाने लगते हैं। धन कमाने के लिए सही तरीके अगर नहीं लागू होते तो फिर हम गलत तरीकों से भी धन कमाते हैं और यही कारण है कि आज समाज में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। पहले कहते थे धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया और चरित्र गया तो सब कुछ गया। आज स्थिति क्या है? धन गया तो सब कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया और चरित्र गया तो कुछ नहीं गया। लोग धन कमाने के लिए अपने चरित्र की परवाह नहीं करते, आज संबंधों की भी परवाह नहीं करते। संबंध माना भाई भाई के दुश्मन हो जाएंगे अगर धन संपत्ति के बंटवारे में थोड़ा कम ज्यादा हो गया। हाँ, बेटा बाप का भी दुश्मन हो जाता है, भाई भाई तो छोड़ो। आप कुछ समय पहले अखबार में खबर आई थी कि यहाँ एक शहर है पास में, वहां पर एक पिता ने अपनी खेती की जमीन बेची, करीब 10 लाख उनको मिले होंगे, उनके 2 बेटे थे, तो वो 10 लाख रुपए उन्होंने अपने बेटों को नहीं दिए। वो नहीं समझते होंगे कि अभी मुझे अपने बेटों को देना चाहिए और वो बेटे जबरदस्ती कर रहे थे अपने पिता से कि हमको वो जमीन का पैसा मिलना चाहिए, और जब नहीं दिया तो वो दोनों बेटों ने मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी। तो धन हमारे जीवन की आवश्यकता जरूर है, लेकिन धन सब कुछ नहीं है। धन से आप किताबें खरीद सकते हैं, ज्ञान तो नहीं खरीद सकते। आप घड़ी खरीद सकते हैं, समय तो नहीं खरीद सकते। आप दवाइयां खरीद सकते हैं, स्वास्थ्य तो नहीं खरीद सकते हैं। तो धन जरूर कमाना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से कमाया हुआ धन जीवन में सुख शांति लाता है, और गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी भी सुख शांति नहीं लाता, जीवन में तनाव ही पैदा करता है। ऐसे ही बच्चों की समस्या, माता पिता कई बार बच्चों से बहुत अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन बच्चे अगर आज्ञाकारी नहीं हैं, गलत संग में पड़ जाते हैं, गलत आदतों में चले जाते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, तो वो अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाते। कई बार बच्चे योग्य होते हैं, माता पिता चाहते हैं वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े बिजनेसमैन बने, जो भी वो बनाना चाहते हैं, तो योग्य होते हैं तो वो जरूर उन अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, लेकिन कई बार बच्चे उतने योग्य नहीं होते या उनकी रुचि कहीं और होती है, जो आप चाहते हैं वो नहीं करना चाहते, तो उसका फिर दबाव पड़ता है। जो हम अपेक्षा रखते हैं वो बच्चों पर दबाव डालती हैं और इस कारण कई बार बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। हम देखते हैं जब परीक्षा के परिणाम आते हैं तो कई बच्चे सुसाइड करते हैं। एक ऐसे ही लड़के ने सुसाइड किया अपने एग्जाम के रिजल्ट के बाद, और उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मेरे पिता चाहते हैं मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन मैं अभी एग्जाम में फेल हो गया हूं, मुझे पता है कि मैं कितनी भी मेहनत करूं मैं इंजीनियर नहीं बन सकता, और इसीलिए मैं ये कदम उठा रहा हूं क्योंकि मैं अपने माता पिता को नाराज नहीं करना चाहता। तो देखिए, कई बार बच्चे बहुत भोले होते हैं, वो भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं, या सुसाइड नहीं करेंगे तो घर छोड़कर चले जाएंगे, यानी कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो हमें ये देखना है कि बच्चा योग्य है या नहीं और उसकी रुचि कहाँ है, उस अनुसार ही यदि हम उनका मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें प्रोत्साहन देते हैं, तो फिर बच्चे वो करते हैं जो आप उनसे चाहते हैं। जब हम कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो काफी समय हम अपने कार्य क्षेत्र पर व्यतीत करते हैं, 8 घंटे का समय हमारा वहां होता है। वहां भी कई समस्याएं आती हैं, हमारे अधिकारी होते हैं, कोई ना कोई बॉस होते हैं, यदि वो कठोर स्वभाव के हैं, आप सारा दिन कार्य करते हैं उसकी प्रशंसा तो नहीं मिलती है, लेकिन कोई कमी रह गई काम में या थोड़ी गलती हो गई, 4 लोगों के सामने बुलाकर आपको अपमानित कर देते हैं, तो फिर तनाव पैदा होता है। जैसे अभी आप में से शेयर किया किसी ने, हमारी गलती बताई जाती है या हमें कुछ कहा जाता है तो जो फीलिंग आती है उससे हमें तनाव होता है। जहां हम कार्य करते हैं कंपटीशन होता ही है, कंपटीशन की भी बात कही गई, लेकिन अगर वो हेल्दी कंपटीशन है तो हमारी प्रोग्रेस होती है, लेकिन अगर उसमें जेलसी है, जहां भी ईर्ष्या द्वेष की नकारात्मक भावनाएं होती हैं, ऐसा कंपटीशन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, वो कंपटीशन हमें नहीं करना चाहिए। फिर हमारे साथियों जिसके साथ हम कार्य करते हैं उनसे हमारे विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन काम हमें उन्हीं के साथ करना है, फिर हमें उनका सहयोग नहीं मिलता है, तो फिर ऐसा वातावरण भी तनाव पैदा करता है। कई बार कोई गलती हो जाती है और हम अपेक्षा करते हैं प्रमोशन की, पर डिमोशन हो जाता है। डिमोशन माना पद कम कर दिया जाता है या कुछ समय के लिए नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है। तो कहते हैं लॉस ऑफ स्टेटस इज मोर स्ट्रेसफुल देन लॉस ऑफ मनी एंड कंफर्ट्स। कार्य का बहुत अधिक दबाव वो भी तनाव पैदा कर सकता है, क्योंकि हम अपने को समय नहीं दे पाते, अपने परिवार के लिए समय नहीं बचता है हमारे पास। वर्किंग कंडीशंस अगर अच्छी नहीं है, जहां हम काम करते हैं वहां सब सुविधाएं नहीं है, या जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो इतने योग्य नहीं हैं, या स्टाफ की कमी है, ऐसी कई बातें होती हैं कार्य क्षेत्र पर। ओवर क्वालिफाइड हो जाते हैं, बहुत पढ़ लिख जाते हैं, डिग्रीज हैं, लेकिन जैसा जॉब चाहते हैं वो जॉब नहीं मिलता है। कई बार नया कार्य शुरू करते हैं वो भी तनाव पैदा करता है। तो ये देखा गया रिसर्च स्टडी में कि 40% एम्प्लॉयज को काफी स्ट्रेस रहता है, और जब उनके तनाव को दूर करने के लिए उचित कदम उठाए गए तो उनके कंपनसेशन क्लेम में 70% तक कमी आ गई। तनाव के बारे में कुछ भ्रामक धारणाएं हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर जीवन में हम सफल होना चाहते हैं, यदि हम उन्नति करना चाहते हैं, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, तो तनाव तो होगा ही, बिना तनाव के हम बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। क्या कहेंगे, सही है गलत है? जो समझते हैं सही है वो हाथ उठाएं। बिना तनाव के हम जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। बहुत कम हाथ उठा रहे हैं, इसका मतलब आप यहाँ शांति वन में बैठे हैं, इस आध्यात्मिक वातावरण का प्रभाव है। तो आप यहाँ ग्राफ में देख रहे हैं कि जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती है, इनिशियल स्टेजेस में हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती है और हम सफल होते हैं, क्योंकि हमारा शरीर ये अंतर नहीं कर पाता है कि हम समस्या के लिए तनाव में हैं या सफल होने के लिए तनाव में हैं। तो शरीर में केमिकल्स तो बन जाते हैं, परफॉर्मेंस बढ़ती है, लेकिन जो हानिकारक केमिकल्स हमारे शरीर में तनाव के दौरान बनते हैं वो केमिकल्स बनते रहते हैं, और उसका प्रभाव क्या होता है, थोड़े समय के बाद हमारी कार्य क्षमता कम होने लगती है, हम थकान महसूस करते हैं। तो हम कई बार ये देखते हैं कि लोग 40 साल की उम्र तक आते आते जितना सफल होना चाहते हैं, जो पद पाना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन अब जब स्वास्थ्य की जांच कराने जाते हैं तो पता चलता है कि कोई ना कोई बीमारी शुरू हो गई, हाँ, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या हार्ट प्रॉब्लम या डिप्रेशन, कुछ भी। और ये सारी साइकोसोमेटिक बीमारियां ऐसी हैं जिनका कोई क्योर नहीं है। क्योर माना एक बार हो गई तो जीवन भर इनके साथ जीना है, सिर्फ इनको दवाइयों से कंट्रोल किया जाता है। तो आपने 40 साल कमा लिया और अगले जितने भी साल आप जीने वाले हैं स्वस्थ रहने के लिए धन खर्च करते रहेंगे ना। लेकिन यदि हम उत्साह से कार्य करते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य करते हैं, जीवन में आत्मविश्वास से कार्य करते हैं तो भी हम सफल होते हैं, लेकिन उसका हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं होता है। तो ये भी एक भ्रम है कि केवल तनाव से ही हम सफल हो सकते हैं। फिर ये भी देखा गया कि लोगों से यदि पूछा जाता है आपके तनाव का कारण क्या है, जैसे हमने आपसे पूछा, तो ज्यादातर हम परिस्थितियों को या दूसरों को ही दोषी बताते हैं। 400 लोगों के ऊपर एक सर्वे किया गया तो 80% लोगों ने कहा कि उनको दूसरों के कारण तनाव होता है। जैसे एक सास थी, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था, तो उसको पूछा आपका ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो जाता है, तो उसने क्या जवाब दिया होगा, मेरी बहू के कारण, मेरी बहू मैं जैसा चाहती हूं वैसा नहीं करती है और ही मेरा सामना करती है, इसीलिए मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और वो बहू को सिर दर्द रहता था, उसको पूछा गया तो उसने कहा मेरी सास के कारण मुझे सिरदर्द रहता है, क्योंकि वो मेरे हर काम में गलती निकालती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मुझे सिरदर्द हो जाता है। अब ऐसे ही माँ बाप को पूछा गया तो उन्होंने कहा बच्चों के कारण, और बच्चों को पूछेंगे तो किसके कारण, माँ बाप के कारण। ऐसे ही वर्क प्लेस पर वर्कर्स को पूछा गया तो उन्होंने कहा मैनेजमेंट के कारण हमें तनाव होता है, मैनेजमेंट हमसे काम तो बहुत लेती है लेकिन जो सुविधाएं वेतन हमें मिलना चाहिए वो सब नहीं मिलता है। और जब मैनेजमेंट को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज वर्कर्स काम नहीं करना चाहते हैं, इतना मुश्किल से उनसे काम कराते हैं लेकिन उनकी मांगे बहुत ज्यादा होती हैं, और अगर मांगे पूरी नहीं करो तो वो हड़ताल करते हैं, यूनियन बनाते हैं। तो हर एक की उंगली किसकी ओर है, दूसरे की ओर है। अगर एक उंगली दूसरे की ओर है तो पहले तीन उंगली किसकी ओर है, मेरी ओर। अगर एक कमी एक दोष सामने वाले में है तो पहले तीन दोष मुझ में है, तो किसको बदलना चाहिए, किसको बदलना चाहिए, मुझे बदलना चाहिए। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मैं राइट हूं, मैं जो सोच रही हूं मैं जो कर रही हूं वो सही है, इनको बदल जाना चाहिए। हाँ, हमेशा ही मैनेजमेंट सोचेगी वर्कर तो आते ही हैं काम करने के लिए ना, तो इनको काम करना ही चाहिए। सास सोचेगी बहू को मैं अनुभवी हूं मेरे अनुसार चलना चाहिए, बहू सोचेगी मेरी सास को आजकल के जमाने को समझना चाहिए। यानी हम अपने को सही समझते हैं और दूसरों को अपेक्षा करते हैं ये बदल जाए, ना वो बदलते हैं ना हम बदलते हैं, हमारी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। एक बार एक समुद्र में लड़ाई का जहाज जा रहा था, समुद्र में तूफान आया और वो तूफान थमने के बाद कैप्टन ने सीमैन को बोला तुम डेक पे जाकर के देखो क्या जहाज सही दिशा में है, कहीं तूफान से हमारी दिशा बदल तो नहीं गई। तो उसने देखा तो उसने कहा कि जहाज तो सही दिशा में है लेकिन एक लाइट है, हमारे ही जहाज के सामने एक लाइट दिखाई दे रही है। तो कैप्टन ने बोला हो सकता है कोई दूसरा जहाज समुद्र में आ रहा होगा तो तुम मैसेज पास कर दो कि आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर लो, हमारी डायरेक्शन में मत आओ, अपनी दिशा बदल लो। तो उसने मैसेज दिया तो तुरंत वहां से मैसेज आया आप अपनी दिशा बदल लो। तो अब सीमैन ने कैप्टन को बोला तो कैप्टन ने कहा उनको पता नहीं है मैं कौन बोल रहा हूँ, उनको बोलो मैं फलाना कैप्टन बोल रहा हूँ आप अपनी दिशा को बदल लो। अब वहां से मैसेज आया मैं फलाना सीमैन बोल रहा हूं, उसने अपना नाम बताया, आप अपनी दिशा को बदल लो। अब ये कैप्टन को गुस्सा आ गया, उसने कहा, उसको कहो ये लड़ाई का जहाज है, ये अपनी दिशा नहीं बदलेगा, आपको ही अपनी दिशा बदलनी है। तो फिर वहां से संदेश आया, मैं तो लाइट हाउस हूं, मैं अपनी दिशा कैसे बदल सकता हूं। हाँ, तो जब उसको समझ में आया कि लाइट हाउस तो अपनी दिशा नहीं बदल सकता है, हमें ही डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, उसके बाद उसने वो डायरेक्शन चेंज किया, कोशिश पूरी क्या की वो बदल जाए ना। तो हम भी अपनी जिंदगी में पूरी कोशिश करते रहते हैं, हाँ, दूसरे बदल जाएं, मुझे बदलने की जरूरत ना पड़े, जब तक कि हम ये नहीं समझ जाते कि ये नहीं बदल सकते, हमें ही बदलना होगा। तो आध्यात्मिकता हमें ये सिखाती है, सेल्फ चेंज लीड्स टू वर्ल्ड चेंज, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, हम नहीं बदलेंगे तो कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, हम बदलेंगे तो दूसरों को परिवर्तन होने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे ही कार्य के बारे में हम सोचते हैं, हम बहुत काम करते हैं, व्यस्त रहते हैं, इसलिए हमें तनाव हो जाता है। तो वास्तव में व्यक्ति को काम से तनाव नहीं होता है, लेकिन हम किस फीलिंग से वो काम करते हैं, किस भावना से वो काम करते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि मैं अपने काम को पसंद करती हूँ, दिल से करती हूँ, रुचि से करती हूँ, तो वो काम मुझे खुशी देता है। लेकिन जो काम हम पसंद नहीं करते और हमें करना पड़ता है या हमसे कराया जाता है, तो वो काम हमें थोड़े समय में तनाव पैदा कर सकता है। तो यहाँ पर अगर मुझे काम पसंद नहीं है तो हम उस काम को बदल लें, अगर हम बदल सकते हैं तो वो काम चेंज कर लें। लेकिन कई बार ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि कई चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो अगर हमें वही कार्य करना है तो देन लर्न टू लव योर वर्क, जो भी आप काम कर रहे हैं उसे आप प्रेम से करिए, दिल से करिए, तो वो काम आपको खुशी देगा। फिर भी अगर बहुत अधिक काम है तो फिर हम टाइम मैनेजमेंट यूज करें, यानी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्जेंट काम है उन्हें हम पहले कर लें, जो लेस इम्पॉर्टेंट है उन्हें हम बाद में कर सकते हैं, जो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है उसे हम पोस्टपोन भी कर सकते हैं। अपने तनाव को कम करने के लिए हम जो साधन अपनाते हैं वो सारे मनोरंजन के साधन हैं। ज्यादातर हम पार्टीज में जाते हैं, बाहर रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं, क्लब्स में जाते हैं, आजकल बड़े बड़े शहरों में लाफिंग क्लब्स भी होते हैं। हम नेचुरल रूप से हंसना भूल गए हैं, तो हमें ट्रेनिंग दी जाती है हंसने की। आप में से भी कई जाते होंगे लाफिंग क्लब्स में, कौन कौन जाते हैं हाथ उठाएंगे, कोई जाते हैं लाफिंग क्लब्स में, देखिए कोई कोई हाथ उठा रहे हैं। तो हम लाफिंग क्लब्स में भी जाते हैं, और नहीं तो लोग व्यसनों का सहारा लेते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग म्यूजिक सुनते हैं, कुछ जिम में जाते हैं, सिनेमा देखते हैं, कई बार मेडिटेशन भी करते हैं। हर एक का अपना अपना तरीका है। तो ये जो भी मनोरंजन के साधन हैं, ये हमारे तनाव को पोस्टपोन कर देते हैं। यानी जब तक हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तब तक हमें लगता है मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, मेरा तनाव बिल्कुल समाप्त हो गया। लेकिन जब वही परिस्थिति फिर से मेरे सामने होती है तो हम वही तनाव का अनुभव करने लगते हैं। इसका मतलब ये तो सही उपाय नहीं है, दीज आर नॉट द रियल रेमेडीज फॉर स्ट्रेस। तनाव मुक्त होने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि मेरे तनाव का मूल कारण कहाँ है। तनाव का मूल कारण कहाँ है? वो मन में है। तनाव कहाँ से शुरू होता है? मन से शुरू होता है। तो किसी भी परिस्थिति में जो तनाव उत्पन्न करने वाली है, हमने देखे बहुत सारे कारण हैं जो तनाव पैदा करते हैं, उस परिस्थिति में हम किस दिशा में सोचते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, तो जैसा हम सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं। हम नकारात्मक सोचेंगे, ये क्या हो गया, ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ ایسا ہوا، اب کیا کریں گے، میں تو کمزور ہوں، یہ سب نیگیٹو تھاٹس ہیں. تو ہماری فیلنگس کیا ہوں گی؟ پینک، فیئر اینڈ وری. ہمیں بھئے ہوگا، چنتا ہوگی، اشانتی ہو جائے گی، ہم پریشان ہوں گے، یہی تناؤ ہے. اور پھر ہم ویسا ہی ویوہار بھی کریں گے، جیسا ہم محسوس کرتے ہیں وہی ہمارا ویوہار ہوتا ہے، اور اس کا اثر ہمارے کاریہ پر پڑتا ہے. لیکن ہم سکاراتمک بھی سوچ سکتے ہیں، یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم پرستھتی میں کس دشا میں سوچ رہے ہیں. ہم آشاوادی بھی رہ سکتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہر چیز میرے کنٹرول میں ہے. تو ہم آتم وشواس سے جب کاریہ کرتے ہیں تو اس سمسیا کو ہم بنا تناؤ سے پار کرتے ہیں. ادھارن کے روپ میں مانو، آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں، اور جو بھی آپ کے گھر میں ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، سرونٹ ہے، اس کو آپ کہتے ہیں چائے بنا کر لے آؤ. وہ چائے بنا کر لاتی ہیں، اور نزدیک آتے ہی کسی کارن سے ساری چائے اور برتن گر جاتے ہیں. اب ہم دو طرح سے ریئیکٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم نکاراتمک ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ یہ درشے ہوتے ہی میں غصہ کروں گی، ناراض ہو جاؤں گی، واتاورن میں تناؤ ہوگا، اور جو کام کرنے والا ہے اس کو بھی بھے ہوگا. لیکن یدی ہم پازیٹو ہیں، سکاراتمک ہیں، تو پھر بھلے ہی یہ پرستھتی اتپن ہوئی، لیکن ہم ان کو کہیں گے کوئی بات نہیں، اور ان کو اور جو کچھ بھی ہوا سمیٹنے میں مدد کرتے ہیں، اور کہیں گے آگے سے آپ دھیان رکھنا. تو ہمیں تناؤ نہیں ہوتا ہے، ہم سہج اس کو پار کر جاتے ہیں. آپ نے پازیٹیو تھنکنگ کا پورا سیشن سنا ہے، اس کے پہلے آپ کا جو سیشن رہا وہ پازیٹیو تھنکنگ کے اوپر رہا، تو ہم بہت وستار میں اس پر بات نہیں کریں گے. لیکن جیسا ہم سوچتے ہیں ویسی ہی پرستھتی میں ہم محسوس کرتے ہیں. تو کوشش کر کے اس پرستھتیوں میں ہم سکاراتمک رہیں. یہ شاید اتنا آسان نہیں ہے، اس ہاتھ کو میں اوپر کروں نیچے کروں، میرے کنٹرول میں ہے، لیکن من کو میں جو وچار دینا چاہوں، جس دشا میں رکھنا چاہوں، اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ من سوکشم ہے. ایک سیکنڈ میں من ایک وچار سے دوسرے وچار میں چلا جاتا ہے. تو من کو ابھیاس دینا پڑے گا، اور وہ ابھیاس ہی میڈیٹیشن ہے. تو یدی ہم پرتی دن یوگ ابھیاس کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے پرستھتیوں میں سکاراتمک رہنا سہج ہو جاتا ہے، اور تناؤ ہم کم محسوس کرتے ہیں. ایک بار ایسے ہی دو بھائی تھے، ایک امیر تھا، دوسرا غریب تھا، دونوں کی استھتی میں بہت انتر تھا. تو اسی انوسار ان کے پاس سویدھائیں تھیں، جو امیر تھا ان کے پاس سب سویدھائیں تھیں، بچے اچھے اسکول میں پڑھتے تھے، لیکن جو غریب تھا ان کے بچے سادھارن اسکول میں پڑھتے تھے. تو ان کے تین بیٹے تھے، اور وہ تینوں اس بات کو الگ الگ ڈھنگ سے سوچتے تھے. جو بڑا بیٹا تھا وہ ہمیشہ ماں باپ کو دوش دیتا تھا، میرے ماتا پتا غریب ہیں، ہماری ٹھیک طرح سے پرورش نہیں کر سکتے ہیں، ہم کو جنم ہی کیوں دیا ہے. اور جو دوسرا بیٹا تھا وہ سوچتا تھا میں اچھے اسکول میں نہیں پڑھتا ہوں، میرے کپڑے بھی اچھے نہیں ہیں. تو ہین بھاونا اس کے من میں آنے لگی. لیکن جو سب سے چھوٹا تھا وہ سمجھتا تھا کہ میرے پتا غریب ہیں، تو مجھے اپنے پتا کو مدد کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اس سمے اس کو وہی سمجھ میں آیا کہ میں اچھی طرح پڑھوں، پڑھ لکھ کر کے میں کچھ بن جاؤں. اور سچ مچ اس نے پڑھائی میں اپنا دھیان لگایا، اور وہ ایک اچھا آفیسر بنا، اور جہاں وہ کاریہ کرتا تھا اس کاریہ کے لیے اس کو اوارڈ ملا، وہ اتنا اچھا کاریہ کرتا تھا. تو وہاں پر اس نے اپنا انبھو سنایا کہ آج میں جس استھان پر ہوں اس کا کارن کہ میرے پتا غریب تھے. جب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، حالانکہ میں کوئی پڑھائی میں بہت جینیس نہیں تھا، لیکن میں نے اپنی پڑھائی پر پورا دھیان لگایا اور میں یہاں تک پہنچا. تینوں ہی بچوں کے سامنے ایک ہی جیسی پرستھتی تھی، لیکن تینوں کے سوچنے کا طریقہ بالکل الگ الگ، تو تینوں کا جیون بالکل الگ دشا میں چلا گیا. تو ہم بھی हमारे में से भी चार लोगों के सामने, दस लोगों के सामने एक जैसी परिस्थिति आएगी, लेकिन हम उसको सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं और अलग अलग तरह से महसूस करते हैं और रिस्पॉन्ड भी अलग करते हैं। मानो आप जहां काम करते हैं आपके बॉस आपको बुलाते हैं, दो लोगों से एक जैसी गलती हो जाती है, तो वो पहले को बुलाते हैं, वो अपनी गलती मान लेता है और सॉरी कहता है और कहता है मैं आगे से ध्यान रखूंगा, आगे से ये शिकायत आपको नहीं मिलेगी, बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन जो दूसरा है वही गलती की है लेकिन मानता नहीं है और ही सिद्ध करता है और दूसरों को भी ब्लेम करता है, इसने ऐसे किया ना इसलिए ऐसा हुआ, तो क्या होगा? बॉस को नाराज किया और खुद भी टेंशन में, उनके साथ उनके संबंध भी अच्छे नहीं रहेंगे। परिस्थिति वही है लेकिन मैंने किस तरह से सोचा और उसको किस तरह से प्रतिक्रिया दी, वही परिणाम मेरे सामने आता है। तो यहां पर हमें अपने विचारों को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो जैसे हमने समझा कि तनाव हमें तब होता है जब प्रेशर्स ज्यादा हो और कोपिंग एबिलिटी कम हो, तो या तो हम प्रेशर्स को कम कर दें तो हमें तनाव नहीं होगा, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि कोई भी परिस्थिति मुझसे पूछकर नहीं आती है। हमारा जीवन सुख से बीत रहा है और अचानक पता नहीं कहां से कौन सी समस्या पैदा हो जाती है, तो हम तनाव महसूस करते हैं और हमें उसका सामना करना ही है। तो फिर हम कोपिंग एबिलिटी बढ़ा सकते हैं, वो आंतरिक शक्ति है। यानी मुझे अगर सामना करने की शक्ति बढ़ानी है, अपना धैर्य बढ़ाना है, आत्मविश्वास बढ़ाना है, शांति की शक्ति बढ़ानी है, तो उसके लिए मुझे भीतरी प्रयास करने होंगे, वो मुझे बाहर से नहीं मिलने वाली है। तो जब हम योग करते हैं तो योग करने से हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। तो आप राजयोग मेडिटेशन सीख रहे हैं, आने वाले दो दिनों में और भी विस्तार से आप इस विषय को समझेंगे, लेकिन तनाव मुक्त होने में राजयोग हमें मदद करता है दो तरह से। पहले हम आत्मचिंतन करते हैं। आपने देखा आज प्रातःकालीन सत्रों में हमने आत्मचिंतन किया, आत्मा के गुणों में हम मन को स्थित करते हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। तो मुझे अपनी कमी समझ में आती है, मेरी समस्या कहाँ है वो हमें पता चलता है, तो हम समझ पाते हैं मुझे कहाँ परिवर्तन लाना है। हमारा आधा तनाव वहीं खत्म हो जाता है जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, यानी सेल्फ रियलाइजेशन करते ही। सामान्यतः हम दूसरों में दोष निकालते हैं, जैसे हमने बात की कि दूसरे में क्या कमी है, उसे क्या बदलना चाहिए, वो हम देखते हैं, लेकिन राजयोग अभ्यास में हम अंतर्मुखी होते हैं, अपने आप को देखते हैं और हमें समझ में आता है हमें कहां परिवर्तन लाना है। दूसरा, ईश्वर के साथ हमारा संबंध होता है। परमात्मा सर्वशक्तिवान है, वो शांति के सागर हैं, उनसे मन को शांति मिलती है, मन शक्तिशाली हो जाता है, तो हमारा मनोबल बढ़ता है और बड़ी बात भी हमें छोटी महसूस होती है। यानी समस्याएं हमें खेल की तरह लगती हैं और हम उसे सहज पार कर जाते हैं। और यही हम देखते हैं कि जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति संसार में हुए, चाहे वो महात्मा गांधी थे, क्राइस्ट थे, महात्मा बुद्ध थे, मदर टेरेसा थी, ऐसा नहीं उनके जीवन में परिस्थितियां नहीं आई, लेकिन बहुत सहज विधि से उन्होंने उन्हें पार किया। आध्यात्मिक बल वो अपने अंदर महसूस करते थे। और राजयोग अभ्यास से एक और परिवर्तन आता है कि हमारे शरीर की फिजियोलॉजी वो चेंज होने लगती है। तनाव की स्थिति में हमारे शरीर में केमिकल्स बनते हैं, वो हानिकारक हैं, लेकिन योग अभ्यास के समय भी हमारे शरीर में केमिकल्स बनते हैं, वो लाभदायक हैं। इन केमिकल्स का नाम है एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स एंड सेरोटोनिन्स। आप देख रहे हैं योग अभ्यास के समय हमारी हार्ट रेट कम होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, रेस्पिरेशन कम होता है, मेटाबॉलिज्म कम होता है, हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और हमारे सभी अंग संतुलन में काम करने लगते हैं तो हमारा तन भी स्वस्थ होता है। मन शांत और स्वस्थ होता है, उसके साथ साथ तन भी स्वस्थ होता है और यही कारण है आज योग लोकप्रिय हो रहा है, खासकर स्वास्थ्य के संदर्भ में। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप कुछ समय मेडिटेशन करें। और यदि हम अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन या कार्य क्षेत्र के जीवन को देखते हैं तो ये तीन बातें हमारे सामने आती हैं, रोल्स, रूटीन्स एंड रिलेशनशिप। हम सब कोई ना कोई रोल जरूर प्ले करते हैं। रोल प्ले करना माना हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगता है, यानी हम ह्यूमन डूइंग्स अपने आप को समझने लगते हैं। मानो हम ऑफिस में काम करते हैं, अफसर हैं और सारा दिन हमें लोगों से काम कराना पड़ता है तो हम ऑफिशियल बने रहते हैं। 8 घंटे मैंने उस रूप में अपना रोल प्ले किया। अब सारा दिन तो हम वही रोल प्ले नहीं करते, हमारे रोल चेंज होते रहते हैं। घर में आ गए, घर में तो अफसर नहीं है, पिता है, पति है या पुत्र है या दोस्तों के बीच में दोस्त हैं, जो भी जिस संबंध में हम आते हैं। लेकिन अगर अपने रोल से हम अपने आप को डिटैच नहीं कर पाए, यानी जहां हमारा जैसा रोल है वैसा रोल अगर हम प्ले नहीं कर पाते तो फिर वो संबंधों में तनाव पैदा करता है। यानी हम ऑफिस का टेंशन घर में ला रहे हैं। कई बार हम अफसर नहीं है, वर्कर हैं, काम करते हैं, कुछ लोग हमें कुछ कहते हैं, हमें सुनना पड़ता है, कई बार गुस्सा भी आता है लेकिन जवाब नहीं दे सकते, गुस्से को पी लेते हैं। अब घर आते हैं तो वही गुस्सा बच्चों पर निकालते हैं, क्योंकि घर में तो गुस्सा कर सकते हैं, या अपने परिवार के सदस्यों पर, पत्नी पर, माँ पर, जो भी सामने आएगा उसके ऊपर गुस्सा निकालते हैं। यहाँ भी ऑफिस का टेंशन हम घर में ला रहे हैं। यानी जहां हमारा जैसा रोल है वैसा रोल हम प्ले नहीं कर पा रहे। कई बार हम घर का टेंशन ऑफिस में ले जाते। एक बार एक जगह रामलीला चल रही थी और वहां हनुमान का रोल प्ले करने वाला पहुंचा नहीं था, तो मैनेजर ने देखा बहुत पब्लिक आ चुकी है और हमें रामलीला शुरू करवा देनी चाहिए, तो उसने अपने एक वर्कर को बुलाया और कहा कि देखो तुम हनुमान का ड्रेस पहन करके स्टेज पर आ जाओ, दृश्य बहुत आसान है इसलिए तुम कर सकोगे, रावण की दरबार लगी हुई होगी और रावण आपसे सवाल पूछेगा तुम कौन, तो तुम कहना मैं श्री राम भक्त हनुमान। उसने कहा ठीक है। अब उसने हनुमान का ड्रेस पहना, वो स्टेज पर आ गया। अब उसने पहले कभी एक्टिंग की नहीं थी और रावण तो कितना जोर से बोलता है ना, उसका रोल ही होता है चिल्लाकर बोलने का, तो उसने बहुत चिल्लाकर उसे पूछा तुम कौन, वो बेचारा घबरा गया। उसने कहा मैं बाबू लाल रिक्शा वाला। तो यहां भी ऐसा होता है कि जब हम टेंशन में होते हैं तो अपने रोल हम ठीक तरह से प्ले नहीं कर पाते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि मैं जो कर रही हूं वो मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये शरीर मुझे कर्म करने के लिए मिला है। तो फिर जब हम आत्मा समझते हैं तो अपने रोल से डिटैच होना हमारे लिए आसान हो जाता है और हम जहां चाहे जैसा चाहे अपना रोल हम प्ले कर पाते हैं। फिर दूसरा है रूटीन्स। तनाव तनाव मुक्त रहने के लिए हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होनी चाहिए, यानी हम समय से सोएं, समय से उठें, समय से भोजन करें, अपना कार्य करें। लेकिन आज की जीवन शैली क्या है, सारा दिन हम व्यस्त रहते हैं और शाम को थके हुए घर लौटते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं, क्या करते हैं रिलैक्स होने के लिए, टीवी देखते हैं और जो टीवी में देखते हैं, हाँ मानो कुछ कहते हैं हम तो समाचार देखते हैं, तो जो समाचार आपने देखे, कहते हैं दुनिया की सबसे बुरी खबर टीवी की सबसे अच्छी खबर होती है, वो समाचार देख के मेरा तनाव कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? हाँ, फिर बहनें सीरियल देखती हैं, हाँ मानो आप सीरियल देखते हैं तो क्या वो हमें स्वस्थ मनोरंजन देते हैं या हमारी भावनाओं को दूषित करते हैं? या मानो आप स्पोर्ट्स देखते हैं तो जो आपकी मनपसंद टीम है जीत रही है तो बहुत अच्छा, और अगर हार रही है तो उसके साथ हम भी ऊपर नीचे, ऐसे ही होता है? और फिर जो टीवी के सामने बैठते हैं वो देर रात सोते हैं। अगर हम रात को देर से सोएंगे और कमजोर मन से सोएंगे, क्योंकि टीवी के देखने का प्रभाव तो मेरे मन पर आता ही है, तो फिर सुबह हम देर से जागते हैं। कहावत है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, एंड लेट टू बेड लेट टू राइज स्थिति क्या होती है? हरी वरी एंड करी। टाइम कम है, काम ज्यादा है, समय पर ऑफिस जाना है, समय पर बच्चों को स्कूल भेजना है, जल्दी जल्दी काम निपटाओ। आप जल्दी जल्दी करेंगे तो क्या करेंगे, दिन ही तनाव से शुरू होता है। फिर हम देखते हैं बहुत सारे काम करने हैं तो एक साथ कई काम शुरू कर देते हैं, एक भी काम ठीक ढंग से पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन सही तरीका है जो काम पहले शुरू किया है उसे पूरा करें और उसके बाद फिर दूसरा काम शुरू करें। कुछ लोग इसके अपोजिट होते हैं, वो काम करना नहीं चाहते तो टाइम पास करते हैं, ऑफिस में भी जाएंगे या आपस में गपशप करेंगे, थोड़ा चाय पियेंगे या जो भी, फिर सोचते हैं जितना हो जाता है उतना हम कर लेते हैं। एक बार एक हॉकर था, हॉकर माना जो ठेले पर फल वगैरह बेचते हैं, तो ऐसे ही वो सड़क के किनारे ठेला लगा करके फल बेचता था। तो एक ग्राहक उसके पास आया तो उसने देखा कि ये ऊंग रहा है, तो उसने उसको कहा कि तुम बिजनेस कर रहे हो या ऊंग रहे हो? तो उसने कहा आपको क्या है, आप बताइए आपको क्या चाहिए? तो उसने कहा देखो अगर तुम ऐसे बिजनेस करोगे तो तुम अच्छी तरह नहीं कमा पाओगे। तो उसने कहा तो फिर क्या करें? तो उसने कहा तुम अच्छे से बिजनेस करोगे, अच्छा कमाओगे, तो फिर ये ठेला नहीं लगाना पड़ेगा, तुम्हारी एक अपनी अच्छी दुकान हो जाएगी। उसने कहा अच्छा अच्छी दुकान हो जाएगी तो फिर क्या होगा? उसने कहा तुम और अच्छा कमाओगे और फिर तुम अपने लिए एक अच्छा घर खरीद लोगे। तो उसने कहा फिर क्या होगा, अच्छा घर होगा तो? तो उसने कहा अरे तुम अपने घर में फिर सुख चैन की नींद सोओगे। तो उसने कहा वो तो मैं अभी भी सो रहा हूं और सोता हूं। तो कई लोग इस तरह के होते हैं कि हमसे जितना हो जाता है हम कर लेते हैं, बाकी तो हम रिलैक्स रहते हैं। तो तनाव मुक्त होने का ये मतलब नहीं कि हम आलसी हो जाएं और अपने कार्य को हम एक्यूरेट वे में नहीं करें, लेकिन हम एक्यूरेट एक्टिव और अलर्ट रहें, लेकिन अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रूप से हम जितना चलाएंगे उतना हम सफल भी होंगे और तनाव मुक्त भी रहेंगे। फिर संबंध, हम सभी संबंधों में रहते हैं और संबंध दो तरह से कार्य करते हैं हमारे जीवन में। अगर हमारे संबंध मधुर हैं, अच्छे हैं, तो वो हमारे तनाव को कम करते हैं, क्योंकि संबंधों में हम अपना सुख दुख बांट लेते हैं, कहते हैं दुख बांटने से आधा हो जाता है। लेकिन अगर संबंधों में कुछ नकारात्मक बातें आ जाती हैं तो फिर तनाव पैदा होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जब हम बहुत अपेक्षा रखते हैं संबंधों में, या संबंधों में जेलसी, हेट्रेड, एंगर, ईर्ष्या, द्वेष या गुस्सा बहुत होता है तो भी तनाव पैदा होता है। एक दूसरे को हम दोष देते हैं, क्रिटिसिज्म मतलब एक दूसरे के निंदा करना, ग्लानी करना, ये भाव जब होता है या अहम भाव ज्यादा होता है या हम दूसरों के प्रति अनुमान लगाते हैं, उन पर शक करते हैं, ये सब संबंधों में तनाव पैदा करते हैं। अपेक्षाओं में खासकर जो हमारे समीप संबंध में होते हैं ना, उनसे हमारी बहुत अपेक्षा होती है। पति सोचते हैं ये मेरी पत्नी है, इनको मेरे लिए ये सब कार्य करना ही चाहिए, मेरे बच्चे को मेरी बात माननी ही चाहिए। वो करते हैं तो ठीक, और नहीं करते हैं तो नाराज, गुस्सा, तनाव, जो भी हम कहें। एक बार एक भाई हमारे पास आए तो उन्होंने कहा कि बहन जी, मुझे हार्ट अटैक हुआ है और मुझे पता है इसका कारण क्या है। मेरे माता पिता जब हम छोटे थे तो उसका देहांत हो गया और अपने छोटे भाई बहनों की मैंने परवरिश की। आज वो सब बहुत अच्छी स्थिति में हैं, अच्छा कमाते हैं, लेकिन अब मुझे उनके सहयोग की जरूरत है। मुझे सहयोग देना तो दूर, वो तो मेरा एहसान भी नहीं मानते कि मैंने उनके लिए कुछ किया, और मुझे बहुत दुख होता है। और डॉक्टर मुझे कहते हैं आप सोचो मत, अगर आप सोचेंगे तो आपको दोबारा हार्ट अटैक हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए। हम कहेंगे नहीं सोचना चाहिए, ऐसे बोलेंगे ना। लेकिन ये कहना जितना आसान है उतना व्यावहारिक जीवन में इतना सहज नहीं होता है। जिसके लिए भी हम कुछ करते हैं, हम सोचते हैं हमने इनके लिए इतना किया, अब हमारा समय आया है तो इनको भी हमारे लिए करना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान हमें सिखाता है, हाँ, या गीता हमें सिखाती है, निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करो, हाँ, निष्काम भाव से अपने कर्म करो, कर्म के परिणाम का नहीं सोचो। अगर हमें उसका प्रतिफल मिलता है तो बहुत अच्छा। कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, मेरा समय था, मैंने काम किया, हमने अपना फर्ज निभाया। लेकिन अगर वो निभाते हैं तो अच्छा, और नहीं निभाते हैं तो भी हम खुश हैं, हमारे अच्छे कर्म तो हमारे साथ हैं। तो जितना हम संबंधों में निस्वार्थ भाव से रहते हैं उतना हमें तनाव कम होता है, और जितना हम अपेक्षाएं रखते हैं यानी अपना स्वार्थ ज्यादा रखते हैं उतना तनाव ज्यादा होता है। फिर जहां ईर्ष्या की बात आती है तो वहां तुलना करने का स्वभाव ईर्ष्या पैदा करता है। हम ये देखते हैं हमारे दोस्त हैं, संबंधी हैं, बहुत उन्नति कर रहे हैं, संपन्न स्थिति में, हम तो वहीं के वहीं हैं, तो ईर्ष्या पैदा होने लगती है। तो कहते हैं कि संसार में तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो दूसरों को दुखी देखकर दुखी हो जाते हैं, दूसरे होते हैं जो दूसरों को दुखी देखकर सुखी होते हैं, और तीसरे होते हैं जो दूसरों को सुखी देखकर दुखी होते हैं। ईर्ष्या हम किसे कहेंगे? दूसरों को सुखी देख करके दुखी होना, ये ईर्ष्या है। तो यहां पर हमें अपने आप को देखना है, क्योंकि ईर्ष्या हमें ही नुकसान पहुंचाती है, दूसरे का कोई नुकसान नहीं होता। कहते हैं चिंता चिता के समान है तो ईर्ष्या अग्नि है जो मनुष्य को जलाती है। तो यदि हम में वो भाव पैदा होता है तो मुझे परिवर्तन करना है और दूसरों के प्रति सदा शुभ भावना रखनी है। ऐसे ही गुस्सा आता है संबंधों में, किसी को कम किसी को ज्यादा आता, सभी को है। और गुस्से में आकर के हम ऐसे शब्द बोलते हैं जो हमें नहीं कहने चाहिए, वो हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। कहते हैं तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जबान का घाव नहीं भरता। कहने वाला भूल जाता है लेकिन सुनने वाला शायद जीवन भर भूल नहीं पाता, और उसका असर हमारे संबंधों पर आता है। संबंध टूटने लगते हैं, और टूटते नहीं हैं तो प्रेम खत्म हो जाता है संबंधों में। तो इसका मतलब क्रोध पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। गुस्से पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो विधि है हम आपको आगे के सत्र में बताएंगे। लेकिन राजयोग अभ्यास भी हमारे गुस्से को कम करने में बहुत मदद करता है। फिर कई बार कोई हमारी आलोचना करता है, किसी ने मेरी निंदा की, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। पर कहते हैं निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। निंदा करने वाला हमारा मित्र हो सकता है? हाँ, कबीरदास जी ने कहा, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी के निर्मल करे स्वभाव। तो निंदक हमारा मित्र है क्योंकि वो हमें हमारी कमी बताता है। मनुष्य का ये स्वभाव है, उसे अपनी कमी स्वयं नहीं दिखाई देती ना, दूसरे ही उसे बताते हैं आपकी ये कमी है। तो कहीं ना कहीं 1% जरूर होती है ना? कहने वाला उसको बड़ा चढ़ाकर कहता है, होगा 1, वो कहेंगे 50 गुना। हाँ, मैग्नीफाइंग लेंस की तरह काम करेंगे। जैसे मानो आप ऑफिस में रोज टाइम पर जाते हैं, पर कभी किसी कारण से आप लेट हो गए। लेट हो गए माना अभी 2-3 दिन आप समय पर नहीं पहुंच पाए, तो जो आपका क्रिटिक होगा उसको मौका मिल जाता है। वो बोलता है, ये तो इनका रोज का ही काम है, ये अपने काम के प्रति लापरवाह है, ये तो हमेशा ही लेट आते हैं। अब हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो फिर अगर वो कमी सचमुच मेरे अंदर है, थोड़ी भी केयरलेसनेस है, तो मैं अपनी उस केयरलेसनेस को खत्म कर दूं। पर अगर नहीं है तो फिर हम उस पर ध्यान नहीं दें, उसको अपने मन पर नहीं ले। जब वो कमी मुझ में है ही नहीं तो हम क्यों उसे स्वीकार करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध किसी स्थान पर गए और वहां पर उनका एक विरोधी उनके सामने आया और उसके मन में जो भी था उसके बारे में उन्होंने उनको कहना शुरू किया। तो उन्होंने चुपचाप सुना, कुछ नहीं कहा, और उसके कहने के बाद भी वो शांत रहे। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, वो उनके सामने गया और कहा कि आपने सुना नहीं मैंने आपको क्या कहा। तो उन्होंने उसको बहुत प्यार से जवाब दिया कि देखो भाई, अगर आप किसी को कोई चीज देते हो और लेने वाला अगर नहीं ले तो वो कहाँ रहेगी। तो वो समझ गया कि उन्होंने मेरी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए कोई असर नहीं हुआ। तो हम क्यों स्वीकार करें उसको, जब वो हमारी कमी है ही नहीं तो हम उसे स्वीकार नहीं करें, तो हमें तनाव नहीं होगा। और तनाव मुक्त रहने के लिए हम 3 A's का फॉर्मूला अपना सकते हैं, एक्सेप्ट, ऑल्टर एंड अवॉइड। हमने देखा कि बहुत सारी परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो फिर हम उन्हें स्वीकार कर लें। मानो आपके बॉस हैं, वो बहुत कठोर स्वभाव के हैं, पर काम तो आपको उसी ऑफिस में करना है, तो वो जैसे स्वभाव के हैं वैसे ही उनको समझकर चलें। तो फिर उनसे जब आप कम्युनिकेशन में आएंगे तो आपको तनाव नहीं होगा। या मेरे परिवार में कोई ऐसे हैं जिनका स्वभाव मेरे से नहीं मिलता है, लेकिन रहना हमको उनके साथ ही है, हम उनको बहुत बार समझा चुके हैं फिर भी उनमें कोई चेंज नहीं आता, तो हम दूसरों को नहीं बदल सकते। दूसरों की जीवन हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, लेकिन हम उनको समझ कर चल सकते हैं, तो फिर हमें तनाव नहीं होगा। कुछ बातों को हम परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कुछ बातों को हमें स्वीकार करना होता है, उन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन कुछ बातों को हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मेरा अपना स्वभाव, अगर मुझे ये समझ में आता है कि मुझे ईर्ष्या हो जाती है, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, मेरी बहुत सेंसिटिव नेचर है, मुझे जल्दी फीलिंग आ जाती है कोई भी बात की, मेरी सहन शक्ति कम है, तो हमेशा हम अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। हो सकता है उसमें मुझे समय लगे, एकदम मेरा गुस्सा कम हो जाएगा या एकदम मेरी ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं। हम उसके लिए प्रयास करेंगे, जैसे हम राज्यों का अभ्यास करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान हम सुनते हैं, उससे हमारे मन में व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। तो समय लगे, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि मुझे बदलना है, तो ये परिवर्तन हम ला सकते हैं। कुछ बातों को जीवन में हमें अवॉइड करना पड़ता है। अवॉइड करने का मतलब यानी हम उसको ध्यान न दें। आज हम देखते हैं ये पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। ग्लोबल विलेज माना दुनिया के दूसरे कोने में क्या हो रहा है, मेरे ड्राइंग रूम में वो 2 मिनट में पहुंच जाता है। अब वो समाचार मुझे तनाव पैदा कर सकते हैं। कई ऐसी घटनाएं होती हैं दुनिया में, हम घर में बैठे बैठे सुनते हैं और उसमें ही हमें तनाव होने लग जाता है, इतने लोग मर गए या यहां ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो या तो हम सुने ही नहीं, अवॉइड करने का मतलब या तो हम सुने ही नहीं, और अगर हम सुन रहे हैं तो फिर हम साक्षी भाव से सुने, उससे प्रभावित ना हो। नहीं तो दुनिया की भी जो यहां तक कि प्राकृतिक प्रकोप होते हैं उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, हम घर बैठे तो कुछ भी नहीं कर सकते, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, जो भी हुआ, सुनामी हुई, तो अगर हम साक्षी भाव से उन घटनाओं को देखते हैं, जो कई बार हमारे साथ खुद के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है, कोई प्राकृतिक प्रकोप की घटना है मानो, तो फिर कुछ होनी है तो हमने उसे स्वीकार किया। अब भविष्य में क्या समाधान है वो हम सोचें, या भविष्य में क्या सावधानी रखनी है वो हम सोचे ना, उस बात को बार बार सोचकर हम तनाव में ना आए। तो इस तरह से ये 3 A's का फॉर्मूला भी अगर हम जीवन में अपनाते हैं तो काफी हद तक हम तनाव मुक्त महसूस करते हैं। तो सार रूप में परिस्थितियों में जब हम आशावादी रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, और उसके लिए हम प्रतिदिन अपने आप को समय दें, रोज हम योग अभ्यास करें, आत्मनिरीक्षण करें, स्वयं में परिवर्तन लाते रहें, तो काफी हद तक हम तनाव मुक्त, स्वस्थ और प्रसन्न जीवन जी सकते हैं। तो मैं 2 पंक्तियों से इसे समाप्त करूंगी। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तो मुस्कुराए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। ओम शांति। तो अभी हम कुछ मिनट योग अभ्यास करेंगे और उसके पश्चात आपका अगला सत्र होगा।